एक दिन में 40 घंटे काम कैसे करें। नमस्कार मित्रों, आज हम आपके साथ समय प्रबंधन के कुछ सूत्रों पर बात करेंगे। कुछ भी करने के लिए समय एक सामान्य आवश्यकता है। आप कितने भी समृद्ध, कुशल, महान या प्रसिद्ध हो जाएं, समय का कोष सीमित ही रहता है। सफलता की कितनी भी चोटियां चढ़ने के बाद आपके दिन में 24 घंटे ही रहने वाले हैं। हमें जो कुछ भी करना है इन्हीं के कुशल प्रबंधन और सदुपयोग से करना पड़ेगा। कुछ साल पहले मैंने नायकों पर एक आलेख लिखा था जिसमें नायकों का आधारभूत सामान्य गुण साहस बताया गया था। इसी तर्ज पर समय प्रबंधन को मैं सफलता का एक आधारभूत सामान्य गुण कहूंगा। हम सबके व्यक्तित्व की अपनी कई विशेषताएं होती हैं। किसी व्यक्ति में कोई गुण स्वाभाविक रूप से निखर कर आता है, किसी में कोई शक्तिशाली है, कोई बुद्धिमान, कोई सुंदर है और कोई उदार। मेरा मानना यह है कि स्वाभाविक रूप से मिली शक्ति को भी शिक्षा, अभ्यास और कौशल से निखारा जा सकता है और अनेक नई शक्तियों को इन्हीं प्रयत्नों से पाया, अपनाया और निखारा जा सकता है। तो आइए आज काल प्रबंधन पर एक लघु विमर्श करते हैं। मेरी सीखी और अपनाई हुई बातें जो भी मुझे इस समय याद आ रही हैं वे आपके सामने रख रहा हूं। जो छूट गई हों या जिन्हें आपने अपने जीवन में सफलता से प्रयोग किया हो उनके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। जब कभी धन की बात चलती है तो दो मुख्य सुझाव सामने आते हैं, एक आय बढ़ाने का, दूसरा व्यय घटाने का। जब बात समय की आती है तो स्थिति थोड़ी भिन्न हो जाती है। इसे बढ़ाना कठिन लगता है लेकिन अपना कौशल और क्षमता बढ़ाने से यदि आप सामने पड़े कामों को कम समय में कर पाएं तो उसका प्रभाव भी एक प्रकार से समय बढ़ाने जैसा ही होगा। इस आलेख में हम ऐसे उपायों पर भी चर्चा करेंगे लेकिन व्यय घटाने वाला पक्ष तो एकदम स्पष्ट और सरल है। उन व्यवधानों का निराकरण कीजिए जो आपके समय को चोरी कर रहे हैं। और चोरी से मेरा आशय उन कर्मों से है जिनमें समय बीतता तो है लेकिन लाभ कुछ भी नहीं होता। तो आइए समय प्रबंधन के कुछ सूत्रों पर बात करते हैं। पहला सूत्र है समय का आदर। समय की सीमित आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए हमें समय को सम्मान देना सीखना चाहिए। समय के सम्मान में अपना ही नहीं दूसरों का समय भी व्यर्थ बर्बाद करने से बचना शामिल है। किसी व्यक्ति से बात करते समय सबसे पहले उससे ये पूछ लेने में कोई बुराई नहीं है कि क्या अभी उसके पास 2, 4 या 15 मिनट हैं। बल्कि यदि आप उसका सामान्य दैनंदिन कार्यक्रम जान लें तो और भी अच्छा होगा। यदि आप दूसरे देश में रह रहे व्यक्ति को फोन कर रहे हैं तो ये चेक कर लीजिए कि कहीं वहां रात के 2 या 3 तो नहीं बजे हैं। अच्छा यही होगा कि पहले उस व्यक्ति से संपर्क करके वार्ता का उचित समय पता कर लें। व्यस्त लोगों से अपॉइंटमेंट लेना एक अच्छी आदत है। याद रहे एक एक पल कीमती है, आपका भी उनका भी। समय का सदुपयोग एक आदत है। एक एक क्षण बचाकर आप दिन भर में कई अतिरिक्त घंटे इकट्ठे कर सकते हैं और फिर कार्य कौशल की सहायता से आप उनका कई गुना अधिक सदुपयोग कर सकते हैं। संसार भर में सक्षम लोग ऐसा ही करते आए हैं। कितने सरकारी कार्यालयों में मैंने ऐसे सक्षम कर्मियों को अपने 10 अन्य सहकर्मियों से अधिक उत्पादक पाया है। दूसरा सूत्र, स्पष्ट, संक्षिप्त परंतु सक्षम संवाद। वर्तमान काल में टीवी, सोशल मीडिया, चैट आदि में हमारा बहुत समय व्यर्थ होता है। मैं चैट से बचता हूं। यदि आवश्यक हो तो फोन पर 2 मिनट की लक्ष्यात्मक वार्ता से वो सब पाया जा सकता है जो लंबी चैट में ठीक से नहीं पाया जा सकता। तो आज का दूसरा सूत्र, कम बात कीजिए, स्पष्ट बात कीजिए, ताकि एक ही बार में संदेश स्पष्ट हो जाए और उसे समझने समझाने में बहुत ज्यादा समय ना लगे। शब्दों की कृपणता का अभ्यास कीजिए। जहां मुख से काम चले मुखड़ा मत कहिए ना लिखिए। यदि आप एक नेता या नीति निर्देशक हैं तो किसी एक ही मुद्दे पर अनेक लोगों से बारी बारी व्यक्तिगत संवाद करने के बजाय ट्विटर, यूट्यूब, रेडियो, टीवी या प्रेस रिलीज आदि जैसे जनसंचार साधनों का प्रयोग करके उनको एक ही बार में संबोधित कर दें। यहां संपर्क या संवाद के उपयुक्त साधन का प्रयोग विचारणीय है। थोड़े से अभ्यास से आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार के संवाद के लिए कौन सा साधन सक्षम है। उदाहरण के लिए ये छोटा सा वाचन एक साथ बहुत सारे लोगों तक एक संदेश पहुंचाने में सक्षम है। सूत्र 3, मुख्य बिंदुओं के नोट्स रखा कीजिए। स्पष्ट संवाद के लिए स्पष्ट विचार बहुत जरूरी हैं। आप कम शब्दों में अपनी बात तभी कह सकते हैं जब आपके मन में उसके मूल बिंदु सुनिश्चित हों, विषय की समझ, अच्छी स्मृति के साथ साथ विषय वस्तु या मूल बिंदु नोट करने की आदत डालने से भी स्पष्ट और सुचारू विचार संप्रेषण में सहायता मिलती है। विचार बिंदु सुरक्षित करने के लिए अपने स्मार्टफोन का कुशल प्रयोग कर सकते हैं या एक छोटी सी नोटबुक जेब में रखिए ताकि किसी विचार को भी किसी भी समय लिख सकें। इस प्रक्रिया से आप कभी भी मुख्य बिंदु को नहीं खोएंगे। साथ ही आप किसी विचार को दिमाग में बलात् पकड़े रहने की ऊहापोह और संघर्ष से भी बच जाएंगे। नोट्स तैयार कीजिए और मस्तिष्क पर अवांछित बोझ डालने से बचिए। सूत्र 4, मुक्त मना रहें। अपने मन मस्तिष्क पर अधिक बोझ न डालें। बात कितनी भी महत्वपूर्ण हो, उसे नोटबुक, डायरी, फोन, ईमेल में बने कैलेंडर या अलार्म में रखकर भूल जाइए। जीवन की फाइलों को अंतिम निर्धारण के साथ बंद करके समस्या का वास्तविक निराकरण करना सीखें। यदि आप सोचते ही रहते हैं, चिंता से मुक्त नहीं हो पाते, तो उसका मूल कारण ढूंढकर उसके निवारण का प्रयास करें। ये बात आपको कोई बाबा जी बताने वाले नहीं हैं कि आपके जीवन में जितने अधिक अनसुलझे मुद्दे रहेंगे, उतना ही बोझ आपके मन पर पड़ा रहेगा। ऐसी अधिकाधिक फाइलों को बंद करने का प्रयास कीजिए। यदि आप इस विषय पर विस्तार से जानना चाहते हैं तो बताइए। इस पर विस्तृत चर्चा करने और आपको समस्या का स्थायी हल खोजने में सहायता करने में मुझे प्रसन्नता होगी। आज का सूत्र 5, समयानुकूल काम कीजिए। कई लोगों का जीवन टीवी सर्फिंग यानी चैनल बदलते रहने में व्यर्थ जा रहा है और कई लोगों का फेसबुक के नोटिफिकेशन चेक करने में। यदि आप इन दोनों में से कुछ करने में जुटे हुए हैं तो आपकी समस्या का कारण कहीं और है। आपको अपने जीवन को रुचिकर बनाने की आवश्यकता है, चाहे वो कोई हॉबी हो जो आपको आनंद दे या फिर कोई नया कौशल जो आपको सफलता का भाव दे। स्वास्थ्य, पोषण आदि का नया कार्यक्रम अपनाकर आप अपने जीवन को रोचक बनाने के साथ साथ अपनी क्षमता और स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकते हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक देखिए अवश्य, लेकिन तभी जब आप बाकी सब काम कर चुके हों और अब आपके पास कुछ और करने को ना हो, बल्कि फेसबुक को आप सोने से ठीक पहले की अर्धनिद्रा की स्थिति में फोन पर देख सकते हैं, क्योंकि फेसबुक पर आपको कोई जटिल गणितीय समस्या हल करने की जरूरत नहीं है, ना ही वहां आप संसार को प्रलय से बचाने के लिए जा रहे हैं। हल्का फुल्का लेखन, सूचना, लाइक, कमेंट आदि के लिए कोई एकाग्रता तो चाहिए नहीं। अपने सचेत और एकाग्र मन को महत्वपूर्ण प्रयोजनों में लगाइए। मतलब ये कि जब तक आपका मन और शरीर तरोताजा है, महत्वपूर्ण काम निपटा लीजिए, अनुपयोगी कार्य को फिजूल वक्त पर छोड़िए। सूत्र 6, ऊर्जावान रहिए। समय प्रबंधन के लिए क्षमता चाहिए और क्षमता बनाए रखने के लिए ऊर्जावान होना जरूरी है। भरपूर नींद, समुचित व्यायाम और उचित पोषण पर ध्यान दीजिए। नींद का कोई विकल्प नहीं है। इसी प्रकार व्यायाम हमारे शरीर को सुचारू, शक्तिशाली और सक्षम बनाता है। सूर्य नमस्कार जैसे सरल और लगभग संपूर्ण व्यायाम नियमित रूप से कीजिए। उच्च कोटि के पोषण के लिए दुग्ध शाकाहार की समय सिद्ध भारतीय परंपरा का पालन कीजिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के लिए अनियमित रूप से मल्टीविटामिन, मिनरल आदि भी ले सकते हैं। अंकुरित दालें स्वास्थ्यवर्धक हैं, पर्याप्त जल पीना लाभदायक है। शवासन, ध्यान, शांति और सहन शक्ति का अभ्यास हमारी ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक है। सूत्र 7, सार सार को गही रहे, थोथा देय उड़ाए। टीवी पर आप जितने कार्यक्रम देखते हैं उससे कहीं अधिक समय कार्यक्रम के बीच में आने वाले विज्ञापनों में व्यर्थ होता है। इसी तरह मुख्य धारा की अधिकांश हिंदी फिल्मों में गीत कथा से असंबद्ध और पूरक होते हैं, जिनके बिना भी फिल्म संपूर्ण है। इसलिए इन कार्यक्रमों के प्रसारण लाइव देखने के बजाय रिकॉर्डेड देखकर आप समय की खासी बचत कर सकते हैं। भाषण, प्रवचन आदि सुनते समय भी दोहराव होने पर उस समय को किसी अन्य काम में लगा सकते हैं, जैसे कि फोन या नोटबुक में रखी महत्वपूर्ण बिंदुओं की सूची ठीक करने में। महत्वपूर्ण पुस्तकों, सिद्धांतों आदि के भी यदि प्रामाणिक सारांश से आपका काम चलता हो तो अवश्य चलाएं। 8वां सूत्र सटीक या अनुकूल उपकरण के प्रयोग का है, और खासकर हम भारतीय जो जुगाड़ में बहुत यकीन रखते हैं, हमें इस सूत्र पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। हमारा बहुत सा समय अनुपयुक्त उपकरणों के प्रयोग में खराब होता है। पेचकस का काम जब आप सिक्के से लेते हैं या पेपर कटर की जगह कागज को मोड़कर हाथ से फाड़ते हैं तो उसमें समय भी नष्ट होता है और काम अच्छा नहीं होता। ऐसे कई कामों में धन या अन्य संसाधन भी व्यर्थ होते हैं। उचित उपकरण इस्तेमाल करके आप काम शीघ्रता से और अच्छी तरह कर सकते हैं। लैपटॉप के उपयोग से आप फोन की छोटी स्क्रीन की बाधा और वर्क स्टेशन की जड़ता से मुक्ति पाते हैं। एक से अधिक मॉनिटर आपको एक साथ कई विंडोज खुले रखने की सुविधा प्रदान करते हैं। रिमोट कीबोर्ड आदि आपको ड्राइंग रूम में बैठकर बड़े टीवी मॉनिटर के प्रयोग की सुविधा प्रदान करते हैं। क्लाउड पर रखी फाइलें कहीं भी प्रयोग की जा सकती हैं। बैटरी के पेचकस, बिजली की आरी, बिना फीते वाले जूते, वेलक्रो वाले जैकेट, फोल्डिंग ईयरमफ, बैटरी चालित पोर्टेबल शेवर आदि समय बचाने के साधन हैं। जो काम आप नियमित रूप से कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसमें समय और संसाधन का निवेश अवश्य कीजिए, क्योंकि ये कई गुना फलदायक होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप लेखक बनना चाहते हैं तो वर्तनी, व्याकरण, यूनिकोड आदि सीखना आपका बहुत समय बचाएगा। मग और बाल्टी से नहाने के बजाय फुहार से नहाइए, समय बचेगा। पानी का सही तापक्रम भी समय बचाने में सहायक है। डिशवॉशर, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर आदि जैसे उपकरण भी समय बचाते हैं। फोन होल्ड करते समय स्पीकर फोन का प्रयोग, सामान्य स्थितियों में हेडफोन, ब्लूटूथ जैसे उपकरणों का प्रयोग आपके हाथों को मुक्त करके समय को बचाता है। पर्याप्त प्रकाश, चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस, छड़ी या हियरिंग एड जैसे सहायक साधनों का प्रयोग भी इसी श्रेणी में आएगा। सूत्र 9, सावधानी। असावधानी दुर्घटना की संभावना को बढ़ाती है। जरा सी असावधानी से आग आदि लगने जैसी भीषण दुर्घटनाएं होती हैं। पानी का एक गिलास गिरकर आपकी कड़ी मेहनत के ब्लूप्रिंट को बिगाड़ सकता है। वहीं बंद बोतल आपको इससे बचा सकती है। अलमारियों के कपाट, डिब्बों के ढक्कन आदि बंद रखें। पटरी पर केले के छिलके, सड़क पर बड़े पत्थर जैसी बाधाओं को सहन ना करें। चीजों को रास्ते का रोड़ा बनने से रोकें। चश्मे, फोन आदि को केस में रखना उसके शीशे की सुरक्षा में सहायक हो सकता है। उपकरणों के प्रथम प्रयोग से पहले उनके मैनुअल पढ़ लें। किसी वाहन को पहली बार चलाने से पहले उसके कंट्रोल से परिचित हो लें। जीवन में यथासंभव सावधानी रखें और अवांछित दुर्घटनाओं से बचें। सूत्र 10, प्रवाह के साथ बहिए। प्रवाह के विरुद्ध तैरने की अपेक्षा प्रवाह के साथ चलने में कम प्रयास में अधिक दूरी तय की जा सकती है। शोर शराबे में एकाग्रता का प्रयास आपके लिए और शांत स्थल में हेडफोन के बिना ऑडियो सुनने का प्रयास अन्य उपस्थित जनों के लिए कम उत्पादक है। लंबी दूरी के विमान जेट स्ट्रीम के सहारे अपनी क्षमता बढ़ाते हैं। सफल लोग परिस्थिति के अनुकूल काम करते हैं, न होने पर अनुकूल परिस्थिति ढूंढते हैं। इससे समय का सदुपयोग होता है। अमेरिका की एक प्रसिद्ध उद्यमी मार्था स्टुअर्ट को सन 2005 में मिथावादिता के लिए 5 महीने का कारावास हुआ। 63 वर्षीय मार्था ने उस दौरान योगाभ्यास करके अपना भार तो कम किया ही, एक पुस्तक द मार्था रूल्स पर भी काम किया। भारत में लोकमान्य टिड़क जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने जेल में रहते हुए पुस्तकें लिखी हैं। धुले जेल में बंदी विनोबा भावे ने अपराधियों के जीवन के उत्थान के लिए हर रविवार को, जो बाद में अनेक भाषाओं में अनुदित होकर कितने ही लोगों के लिए लाभप्रद सिद्ध हुए। सूत्र 11, कर्म, प्रशिक्षण और विश्राम का संतुलन। विपरीत ध्रुवों के बीच संतुलन बना रहना चाहिए। अति किसी भी बात की अच्छी नहीं होती। कोई उपकरण लगातार काम नहीं कर सकता। आप कितनी भी देर तक लगातार काम करते रहें, वो खत्म होने वाला नहीं है। सो एक तार्किक बिंदु पर विश्राम लीजिए। ये बिंदु किसी पुस्तक का एक अध्याय भी हो सकता है, किसी वाहन का एक उपकरण भी, घर की सफाई करते समय ये कोई एक कमरा हो सकता है, और मारक कला सीखते समय कोई एक दांव। लेकिन आपको विश्राम के लिए रुकना ही होगा। आपको आराम भी चाहिए और श्रेष्ठतर काम करने के लिए प्रशिक्षण भी। इनमें थोड़े समय का निवेश इनके बिना लगातार काम करने से अधिक उपयुक्त है। अगर आप लेखक हैं तो लिखने के अलावा पढ़ने की भी आदत डालिए और आप उससे अच्छे लेखक बन सकेंगे। सूत्र 12, कार्य कौशल एवं नवोन्मेष। काम करते समय कई बार उसके प्रावधान, साधन या उपकरणों की कमी अपने आप ही पकड़ में आ जाती है। उनमें सुधार करके आप कम समय में अधिक काम करने का कौशल पा सकते हैं। भारत में यदि आपको ड्राइव करते हुए कई जगह जाना पड़े तो उन्हें क्रमित करते हुए ध्यान रखिए कि दाएं की तुलना में बहुसंख्य मोड़ बाएं हों। केवल इतने भर से आप विपरीत यातायात में फंसने से बचेंगे। अमेरिका में इसी सिद्धांत का पालन करके प्रसिद्ध कुरियर कंपनी यूपीएस ने नो लेफ्ट टर्न अपनाकर न केवल समय बल्कि ईंधन भी बहुत बचाया है। नवोन्मेष एक दुर्लभ गुण है, इसमें निपुण लोग कार्य निष्पादन के अनूठे नमूने ढूंढ निकालते हैं। अन्य सभी लोगों के लिए विषय विशेष के स्थापित विशेषज्ञों से, कौशल और गुरुओं से गुर सीखना एक अच्छा साधन हो सकता है। मैंने अब तक अनेक प्रकार के कार्य किए हैं और लगभग सभी में कुशल प्रक्रियाएं अपनाने के कारण अपना कार्य सुधार सका। संबंधित विषय विशेषज्ञों की सलाह सुनने से मुझे वर्जना नहीं है, भले ही सुनने के बाद मुझे ऐसा लगे कि उनका पुस्तकीय सिद्धांत मैं बरसों पहले नकार चुका हूं। शिक्षकों से भी मुझे अनेक लाभदायक सूत्र मिले हैं और आपको भी मिल सकते हैं। हाँ, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर टहलते छद्म गुरुओं से सावधान रहें, क्योंकि उन लंबी लंबी फेंकने वालों की वास्तविकता निराशाजनक ही नहीं, कई बार हानिप्रद भी हो सकती है। अच्छे परामर्शदाता को पहचानकर उस पर निर्भर होने में कोई बुराई नहीं है। आपकी कार्यकुशलता में वृद्धि के साथ साथ परामर्शदाताओं के मूल्यांकन की आपकी क्षमता भी सुधरती जाएगी। सूत्र 13, तैयार रहें। बालचरों का नियम है तैयार रहें, और मैंने इस नियम को हमेशा लाभप्रद पाया है, विशेषकर समय बचाने के उद्देश्य से। तैयार रहें क्योंकि समय अभी है। लगभग 30 साल हो चुके जब मैं बैंडेड आदि के साथ इलेक्ट्रिक शेवर, नेल कटर जैसी चीजें अपने ऑफिस में रखता हूं। मेरी कार में लेखनी, डायरी, पुस्तकें आदि तो होती ही हैं, अतिरिक्त जैकेट, कई लोगों के लिए पर्याप्त जल, भोजन आदि की आपूर्ति भी सदा उपस्थित रहती है। इन सब ने मेरा बहुत समय बचाया है। शहर के चौराहे पर खड़े किसी गृह विहीन को देने के लिए पैसे निकालने में भी मैं समय व्यर्थ नहीं करता, क्योंकि कार में उनकी आवश्यकता की समस्त सामग्री के बंद किए गए तैयार पैकेट रखे रहते हैं, जो शीशा गिराकर पल भर में उन्हें दिए जा सकते हैं। कोई भी विचार मन में आते ही उसे पकड़ने के लिए फोन में ऑडियो रिकॉर्ड ऐप तैयार रखिए। यदि आप ऑडियो वीडियो स्ट्रीम करते हैं तो उनके ऐप भी, यदि कलाकार हैं तो उनके ऐप आपके पास आवश्यकता पड़ने से पहले ही तैयार रहने चाहिए। क्विक टी या सत्तू जैसी चीजें लाभप्रद हैं। शहर से दूर कहीं अकेले रहने वालों के लिए रेडी टू सर्व भोजन बहुत समय बचा सकता है। सूत्र 14, बहुकार्यण या मल्टीटास्किंग। खाना खाते समय अखबार पढ़ लेना, कपड़े बदलते समय टीवी पर समाचार देख लेना, या कार चलाते समय संसार भर की खबरों को रेडियो से जान लेना सच्चे बहुकार्यण के उदाहरण हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो दांत मांजते समय उठक बैठक लगा लेते हैं, कुछ लोग शौचालय में पढ़ते हैं, कुछ लोग वहां अपने फोन संदेश चेक कर लेते हैं। एक मित्र सुबह की चाय के लिए कप में क्विक टी पाउडर माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए रखकर उसकी घंटी बजने तक सूर्य नमस्कार के कुछ चक्र पूरे कर लेते हैं। कोई कोई व्यायाम के समय सेल्फ हेल्प या व्यावसायिक जानकारी की ऑडियो बुक सुनते हैं। अपनी पहली नौकरी में मैं प्रतिदिन कुल 6 घंटे से ज्यादा की यात्रा ऐसी भीड़ भरी बसों में करता था जिनमें ठीक से खड़े हो पाना भी कठिन था। रविवार को छुट्टी मिलने पर मैं सप्ताह भर के अखबारों से काम की क्लिपिंग काटकर उन्हें फाइल करते हुए टेप रिकॉर्डर में ऑडियो बना लेता था और फिर सप्ताह भर सुबह शाम सुन लेता था। इतने भर से मैं बैंक अधिकारी की परीक्षा में 100% अंक लेकर आया और चुने गए अभ्यर्थियों में प्रथम 5 में स्थान पाया। बहुकार्यण मेरी जमकर अपनाई हुई विधि है और इसमें मैंने श्रवण का भरपूर प्रयोग किया है। यदि आप एक साथ कई लोगों से बात करने में अभ्यस्त हैं तो फोन पर बात करते समय भी 2 और काम आराम से कर सकते हैं। आधुनिक हस्तमुक्त फोन भी आपको बात करते समय अन्य कार्य करने की सुविधा देते हैं। सूत्र 15, व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्डर। व्यवस्था की आदत आपका कौशल बढ़ाने के साथ साथ आपका समय भी बचाती है। व्यवस्थित रहना सीखिए, कंप्यूटर में जानकारी को नियमित कीजिए और घर, कार्यालय आदि भौतिक स्थलों में सामान को। व्यवस्था आपको सही समय पर सही सामग्री ढूंढने में प्रभावी सिद्ध होती है। लेबलिंग, टैगिंग आदि का भरपूर प्रयोग कीजिए। फाइलों और फोल्डरों के नामकरण और विभाजन की भी संपूर्ण रूपरेखा बनाकर रखिए। अपने कार्यस्थल को आरामदायक रखिए। उपयोगी वस्तुओं को सटीक ऊंचाई पर रखने का प्रयास कीजिए ताकि शरीर पर अतिरिक्त दबाव ना पड़े। सूत्र 16, प्रतिनिधित्व और डेलीगेशन। आप कितने भी सक्षम हो, कितने बड़े तुर्रमखा हो, अपने को अलादीन के चिराग का जिन्न न समझें। डेलीगेशन अर्थात प्रतिनिधित्व आपका उद्धारक है। व्यवस्था के पदानुक्रम में अपना स्थान पहचानिए। अपने उत्तरदायित्व को समझकर सब कुछ अपने हाथ में रखने का प्रयास न करें। महत्वपूर्ण कार्य में एकाधिक लोगों को शामिल करने का प्रयास करें, उन्हें प्रशिक्षित करें। इस संबंध में आवश्यकता अनुसार आलेख, प्रपत्र, प्रशिक्षण प्रारूप आदि भी बना लें। सहकर्मियों को यथाशक्ति मेंटोर करें और सशक्त भी। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कुछ सीखने के बजाय आत्मप्रचार या आत्मप्रसार में ही लगे रहेंगे। ऐसे लोगों से निराश ना हो। समुचित अवसर देने पर भी न सुधरने वाले आत्म केंद्रितों को तंत्र से अलग कर दें, लेकिन प्रतिनिधित्व के महत्व को अवश्य पहचानें और प्रयोग करें। सूत्र 17, कार्याकार विभाजन। काम को उसके आकार के हिसाब से श्रेणियों में बांटने का स्वभाव विकसित कीजिए। मैं अपने कामों को उनमें व्यय होने वाले समय के हिसाब से घंटे, दिन, सप्ताह की श्रेणी में डाल देता हूँ। अर्थात कुछ घंटों में होने वाले काम, एक दिन से अधिक वाले काम और एक सप्ताह से अधिक समय लेने वाले काम। ध्यान दीजिए कि 5 मिनट में होने वाला काम अगर अगले सप्ताह के लिए टाल भी दिया जाए तो भी वो 5 मिनट वाला ही काम रहेगा, एक सप्ताह वाला नहीं। एक महीने से बड़े काम जैसे कि आपकी डिग्री, इन्हें अलग परियोजनाओं में डालिए और इन्हें आपके अन्य लंबित अपूर्ण कार्यों में नहीं मिलाया जाना चाहिए। कार्याकार का सटीक अनुमान लगाने की क्षमता अभ्यास से सुधरती जाएगी। सूत्र 18, कार्यसूची तथा प्राथमिकता क्रम। अपने अपूर्ण कार्यों की सूची बनाकर उनका क्रम निर्धारण कीजिए। क्रम निर्धारण के लिए आप कई गुणधर्म प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे काम न करने या टालने से संभावित आसन्न विपत्ति का स्वरूप। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको क्या नुकसान होने वाला है? काम करने में आने वाले जोखिम की मात्रा। अगर आप ये काम करने के बारे में सोचते हैं तो क्या क्या कठिनाइयां आएंगी, क्या खतरे सामने मौजूद हैं, उनको कैसे निपटेंगे? लंबित कामों का आकार, क्या ये मिनटों वाला काम है, घंटों वाला काम है या सप्ताह वाला काम है? लंबित कार्य की किसी अन्य कार्य पर निर्भरता, क्या ये काम करने से पहले आपको कोई और काम करना पड़ेगा तभी ये काम शुरू किया जा सकता है? इन सब बातों को समझिए और फिर कार्यसूची में प्राथमिकता का क्रम निर्धारित कर दीजिए। सूत्र 19, प्रतीक्षा कभी नहीं। समय की सब प्रकार की हानियों में प्रतीक्षा में की गई हानि सबसे बुरी है। प्रतीक्षा का अर्थ ही है कि आप कुछ और नहीं कर रहे हैं बल्कि कुछ होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मीटिंग आदि में समय से पहुंचिए, लेकिन किसी मित्र की शादी में घोड़ी चढ़ने के मुहूर्त पर आपके ना पहुंचने पर घोड़ी त्यागपत्र नहीं दे देगी। सो वहां पहले से पहुंचने की आतुरता की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि समय से पहले कहीं पहुंच ही जाएं, तो कोई जनोपयोगी कार्य ढूंढ लें, भले ही वो फुटपाथ पर पड़े केले के छिलके हटाने का काम हो। और कुछ नहीं तो अपने फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट में देखकर उन सभी मित्रों से बात कर लें जिनसे लंबे समय से संपर्क नहीं हुआ है। लेकिन खाली प्रतीक्षा में कभी अपना समय व्यर्थ ना करें। कुल मिलाकर कुशल समय प्रबंधन भी अभ्यास से सीखा जा सकता है। आंखें खुली रखिए, अति परिश्रम के विकल्प कौशल का प्रयोग कीजिए। फिर मिलेंगे एक अल्प विराम के बाद। आपका दिन शुभ हो।